तब तक सुमित गुस्से से ऊपर उठा और दनदनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। राधिका सुमित के जाने के बाद मुस्कुराने लगी, उसके गाल एकदम लाल होने लगे। मन ही मन में वो सोचने लगी, फाइनली मिस्टर सुमित, आपको आपकी मोहब्बत का एहसास होने लगा है, लेकिन आपने मुझे बहुत सताया है। इतनी आसानी से तो मैं आपको माफ नहीं करने वाली हूँ। दूसरी ओर इस वक्त रश्मि रौनक के पास बैठी हुई थी, उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। आकाश भी उस वक्त वहां मौजूद था। हालांकि रात काफी हो चुकी थी और नानी माँ दादी जी ने सभी को आराम करने के लिए कह दिया था, लेकिन रश्मि की आंखों में आज दूर दूर तक नींद नहीं थी। यही हाल आस्था का था। आस्था की भी आंखों में नींद नहीं थी। हालांकि वो रौनक और रश्मि के साथ नहीं थी, लेकिन वो अरमान के साथ मौजूद थी और उसका हाथ थाम कर बैठी हुई थी और अरमान के सीने से लगकर बड़बड़ा रही थी, अरमान जी, अगर आपने हमें नहीं रोका होता तो शायद हमारे साथ भी ये सब कुछ हो जाता। अरमान जी, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर वो लड़की अपनी नफरत में हमें ड्रग्स दे देती तो। नहीं 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 नहीं, ये सोचते सोचते ही आस्था का दिल कांप जाता था। उसने अरमान को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अरमान उसे एक बच्चे की तरह होल्ड करके बैठा हुआ था। तभी अरमान ने अचानक आस्था के बालों को पीछे किया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, शांत हो जाओ आस्था, मेरे रहते तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होगा। तुम तक पहुंचने से पहले हर एक मुसीबत को अरमान सिंघानिया का सामना करना होगा, और ट्रस्ट मी, कोई भी मुसीबत आज तक इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अरमान सिंघानिया का सामना ना कर सके। अरमान की बात सुनकर आस्था के दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा था, लेकिन उसकी घबराहट अभी तक कम नहीं हुई थी और उसके हाथ पैर कांपते हुए अरमान देख रहा था। तो अरमान ने आस्था को गोद में उठाया और बड़े ही प्यार से उसे बेड पर लिटा दिया और खुद हल्के हल्के उसके हाथ पैरों और सर में धीरे धीरे मसाज देने लगा। आस्था को काफी कंफर्टेबल और अच्छा सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिल इस वक्त बेहद बेचैन था और अचानक वो बोली, मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ। तो अरमान ने आस्था के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, हाँ आप देख सकती हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है और इस वक्त रौनक को आराम की बहुत ज़रूरत है और उसे अभी होश नहीं आएगा, उसे कल दोपहर तक होश नहीं आ पाएगा। तब आस्था ने अरमान के हाथ पर हाथ रखा और जिद करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अरमान जी, बस मैं अभी और इसी वक्त रौनक को देखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे वहाँ लेकर चलिए और आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि मुझ में अकेले में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेली उसे देख सकूँ। अब आस्था की बात सुनकर अरमान ने अपनी आंखों के इशारे से उसे हाँ बुला दिया और उसे गोद में उठाकर वो जल्द ही आहन के कमरे में आ गया। और जैसे ही वो कमरे में आया, उसने देखा कि आकाश और रश्मि पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अब उन दोनों को वहाँ देखकर आस्था ने अरमान को उसे गोद से उतारने को बोला, लेकिन अरमान ने किसी की कोई परवाह नहीं की और आस्था को गोद में लिए ही उसने उसे रौनक के पास बिठा दिया। रश्मि और आस्था दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ही रौनक की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें भरी हुई थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थीं कि उनकी फाइटर रौनक के साथ कोई ऐसा षड्यंत्र कर सकता है। आस्था ने रौनक को फाइटर नाम दिया था, जो किसी से भी भिड़ जाती थी, किसी से मारपीट देती थी, कुछ भी कर दिया करती थी, लेकिन उसे किसी भी बात का डर नहीं लगा करता था। इतना ही नहीं, लड़कों से कदम मिलाकर चलती थी, लेकिन आज उसके साथ एक लड़की ने ऐसी घटिया हरकत की थी जिसके सोचते हुए भी शर्माती है। वेल, तभी रश्मि ने आस्था के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें टेंशन नहीं होना चाहिए आस्था, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तुम इतना सब स्ट्रेस बर्दाश्त कर सको, और ये तो ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा रही कि तुम उस वक्त रौनक के साथ नहीं थी, वरना तुम दोनों ही उस अस्पताल में एक साथ जाने वाली थी ना। तब आस्था ने अपनी पलकें झपका दी। रश्मि ने आस्था को गले से लगा लिया और दिलासा देते हुए बोली, फिक्र मत करो बेटा, पक्का सुबह तक हमारी रौनक ठीक हो जाएगी। और चहकते हुए बोलेगी, रश्मि दीदी देखना। ऐसा बोलते हुए आस्था और रश्मि दोनों ही आपस में अब रोने लगी। अब उन दोनों को रोता हुआ देखकर अरमान और आकाश दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा था। आकाश रश्मि की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, क्योंकि उसे रश्मि से इजहार रश्क के बाद उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि वो रश्मि की आंखों में इतना सा भी दर्द, आंसू या कोई भी तकलीफ नहीं देख सकता था। लेकिन ये तकलीफ उसकी बहन से जुड़ी थी। रश्मि ने रौनक को एक छोटी बहन की तरह बचपन से पाला था, बचपन से उसे बड़ा होते हुए देखा था, तो इस वक्त उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। वहीं अरमान आस्था को रोते हुए नहीं देख पाया और उसके पास जाकर उसने आस्था को एक बार फिर से गोद में उठा लिया और धीमे स्वर में बोला, आपने जिद की आप रौनक को देखना चाहती हैं, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आकर रोना शुरू कर देंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। अरमान ने जैसे ही साफ साफ सबके सामने यानी आकाश और रश्मि के सामने ये बोला, आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी भीगी और टिमटिमाती ही आंखों से अरमान की ओर देखने लगी। उस वक्त वो बड़ी ही प्यारी और किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सिमट गई थी। और फिर आस्था ने भी किसी की परवाह किए बिना जल्दी ही अपने सर को अरमान के सीने में छुपा लिया, क्योंकि अरमान का सीना अरमान की बाहें ही थी जहाँ पर आस्था खुद को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस किया करती थी। वेल, अब आकाश ने भी रश्मि के आंसुओं को पोंछा और हौसला बढ़ाते हुए बोला कि अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो कल सुबह जब रौनक को होश आएगा तो उसे कौन संभालेगा, और उसे संभालने के लिए तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम चलो, उसे आराम करने दो। तब आकाश ने भी रश्मि को गोद में उठा लिया और सीधा कमरे में ले आया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। वहीं अरमान की आंखों में आज कोई नींद नहीं थी। हालांकि उसने आस्था को बेड पर अपनी गोद में लिटा रखा था और बड़े ही प्यार से उसके सर पर हेड मसाज दे रहा था, लेकिन बार बार टीवी पर जब डेविल किंग के बारे में बोला गया, उसकी खबर दिखाई जा रही थी कि किस तरह से डेविल किंग ने 12-13 आदमियों को काट डाला, और उसके बाद आस्था का रिएक्शन अरमान की आंखों के सामने आ रहा था। उसे रह रह कर ये लग रहा था कि जिस दिन आस्था को ये पता चल गया कि उसका पति ही डेविल किंग है, उसके बाद क्या होगा। क्या उसके बाद आस्था उसे माफ कर पाएगी? कहीं आस्था उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी? तो अरमान ने डिसीजन ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपने जीते जी इस बात को कभी भी आस्था तक पता नहीं लगने देगा कि वही डेविल किंग है। वहीं आस्था भी अब अरमान का साथ पाकर बड़े ही सुकून की नींद सो गई थी। वहीं दूसरी ओर सुमित के होटल में एक बार फिर हंगामा मचा हुआ था। रात के 2:30 बजे डॉक्टर राजवीर जिंदल जी ने, जिनका नशा अब काफी हद तक कम हो गया था, अपने आप को एक कमरे में देखकर वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो उठा और जोरों से चीखने चिल्लाने लगा कि आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई जिसने मुझे इस तरह से होटल रूम के कमरे में बंद कर दिया। राजवीर जिंदल का गुस्सा बेहद बढ़ चुका था और उसने उस कमरे के सभी सामान में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया था। होटल मैनेजर और बाकी के स्टाफ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजवीर जिंदल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
क्योंकि उसे हर रात को अपनी बीवी को नग्न बदन करके उसके साथ सोने की आदत थी, तो इस तरह से भला वो एक होटल रूम में कैसे सो सकता था? पिछले 20 सालों में आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपनी बीवी के बिना सोया था। हालांकि अभी रात के 2 बजे थे और इस वक्त वो वहां से वापस जाना चाहता था, लेकिन सुमित ने होटल मैनेजर और बाकी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जब तक वो इस आदमी से अगली सुबह मुलाकात नहीं कर लेता, ये आदमी इस होटल से कहीं नहीं जाएगा। तो इसीलिए राजवीर जिंदल ने पूरे होटल में हंगामा मचा रखा था, लेकिन सब लोग उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब तो राजवीर जिंदल हाथापाई पर उतर आया था, लेकिन होटल स्टाफ ने बाहर से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया था और राजवीर जिंदल की हरकत के बारे में उन्होंने इस वक्त बताने के लिए सुमित को कॉल पर कॉल करने शुरू कर दिया था। लेकिन सुमित उस वक्त ध्रुव और आहान के साथ था। आहान ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इसलिए वो लोग उसे साथ अपने कमरे में ले आए थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आहान नशे की हालत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोले जा रहा था, मैंने गलती नहीं की है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना नहीं छुआ, नहीं छुआ। ये कहते हुए आहान एक मासूम सा बच्चा लग रहा था, क्योंकि उसने रौनक को बिना उसकी इजाज़त के छुआ था। क्योंकि भले ही रौनक को उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, लेकिन रौनक नशे में थी और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया था। लेकिन ये बात आहान को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि न जाने अब क्या होगा, उसने उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वहीं सुमित इन सब चक्कर में अपना फ़ोन अपने कमरे में ही भुलाया था। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसका फ़ोन कितना ज़्यादा बज रहा है। वो तो आहान एक मिनट के लिए भी सुमित और ध्रुव का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपनी कहानी बताने बैठ जाता और बड़बड़ाने लगता कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक ही बात लगातार वो कम से कम 100-200 बार बोल चुका था, और ये बात आहान के मुंह से सुन सुनकर ध्रुव और सुमित दोनों ही पक चुके थे। और फिर था थार कर ध्रुव ने सुमित को बोला कि वो एक बार आहान को पकड़ कर रखे, तब तक वो इसका कुछ जुगाड़ करके आता है, वरना पूरी रात यही बात बोलते हुए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये पूरी रात गुजार देगा और हम लोगों को भी सोने नहीं देगा। तो ध्रुव की बातों में कहीं ना कहीं सुमित को सच्चाई नजर आई और फटाफट से उसने आहान को पकड़ लिया, और जल्दी ही ध्रुव ने एक छोटी सी वाइट रंग की मेडिसिन तुरंत आहान के मुंह में डाल दी और फिर आहान देखते ही देखते गहरी नींद में सो गया। आहान के सोने के बाद सुमित ने ध्रुव से कहा कि उसे भी आराम करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन उन लोगों की जिंदगी का काफी बड़ा दिन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर डिंपल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे मौजूद थी
और बार बार उसके शरीर की कंपकंपी छूट रही थी, क्योंकि जिस तरह से ध्रुव ने उस पर हाथ उठाया था और उसका गला घोटकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी, साथ ही साथ जितने भी अरमान सिंघानिया, सुमित, आकाश उस वक्त वहां मौजूद थे, तो उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसने अब सीधे सीधे एंजल से बात करने की कोशिश की थी कि वो इसमें मदद करे। अपने पापा को इस बात के बारे में वो कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त उसके पापा बीमार थे, उनकी हाल ही में एक सर्जरी भी हुई थी, तो वो उन्हें टेंशन नहीं करना चाहती थी। और उसने जो हरकत की थी तो किस मुंह से वो उन्हें क्या बताती। लेकिन फिलहाल उसने जो घटिया हरकत की थी उसका भुगतान तो उसे करना ही था। एंजल ने डिंपल की कोई कॉल अटेंड नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त उसे अविनाश ने काफी सारे काम में लगा रखा था, क्योंकि एक तो वो उनकी अरमान सिंघानिया के साथ मीटिंग होने वाली थी, साथ साथ अविनाश अब जल्द से जल्द अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे सीधे उस चौकीदार काका से मिलने का फैसला किया था, जिस चौकीदार काका ने आस्था को देखा था। इसलिए अविनाश ने डिसाइड किया था कि वो आस्था का स्केच बनवाएगा। वो आस्था का स्केच अगर एक बार बनवा लेता है तो वो फिर आसानी से उसे ढूंढ पाएगा। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद नजर आ गई थी। इसके लिए उसने एंजल को उसमें इन्वॉल्व कर लिया था, क्योंकि अविनाश बाहरी लोगों से बेहद कम मिला करता था और उसके सारे काम उसके सेक्रेटरी या उसके साथ काम करने वाला स्टाफ ही हैंडल किया करते थे। इसीलिए अविनाश ने एंजल को ये काम दे दिया था और एंजल ने फौरन एक स्केच आर्टिस्ट का इंतजाम भी कर लिया था और सोचने लगी कि अगर वो लड़की मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हुई तो अविनाश तो उसे देखते ही पसंद कर लेगा, और वैसे भी वो तो उसे तागलों की तरह ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं एंजल के मन में अब आस्था के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उसे नहीं पता था कि असल में अविनाश जिसे ढूंढ रहा है वो उसकी बहन है। उसे तो बस सिर्फ इतना ही पता था कि जरूर इंडिया की किसी लड़की पर अविनाश का दिल आ गया है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए इंडिया तक आ गया, क्योंकि वो उसे पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था। उसको इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि पूरे शहर भर में उसको ढूंढते हुए अविनाश को पूरे 15 साल हो चुके थे।